أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ہماری آموزش فلسفہ میں چھٹے درس میں چل رہی ہے. اہم ترین بعض موضوعات اور مطالب کہ جن کی طرف توجہ کرنا ایک فلسفے کے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے، ان کو بیان کر رہے تھے. جو اہم بحث تھی وہ یہ تھی کہ فلسفے کا موضوع کیا ہے. اس پر ہم نے گفتگو کی. بعض مطالب جو انہوں نے بیان کیے اس کی توضیحات جو ہے مکمل طور پہ پچھلے دروس میں گزر چکی ہے. اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آج کی بحث چونکہ اسی کے ساتھ مربوط ہے تو واضح ہو جائے. موضوع فلسفہ کے اندر ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ فلسفہ جو آج کل کی اصطلاح میں ہے وہ فلسفہ اولیٰ کہلاتا ہے، فلسفہ میٹافیزک. اور فلسفہ اولیٰ کا موضوع قرار دیا تھا موجود مطلق، نہ کہ مطلق موجود، کہ اس کی تفصیل سے جو دائی جو ہے ان کے درمیان وہ بیان کر دی تھی، موجود مطلق. بس فلسفے کا اگر کوئی موضوع آپ سے پوچھ لے کہ فلسفہ جو کہ فلسفہ اولیٰ ہے، چونکہ وہ چیزیں بھی آپ نے حتماً ذہن میں رکھنی ہیں کہ فلسفے کی چار اصطلاحات تھیں کہ جو ہم پچھلے دروس میں جو ہیں وہ بیان کر کے آئے ہیں تفصیل سے، اس میں سے ایک اصطلاح کیا تھی؟ فلسفہ اولیٰ. کہ اس کا موضوع جو ہے وہ موجود مطلق ہے. اچھا، ان چار اصطلاحوں کا جاننا ضروری بھی بہت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مثلا اردو زبان کے اندر بھی جو میٹر لکھا گیا ہے وہ فلسفے کے اندر، جو ہمارے خود پاکستانیوں نے اردو زبان نے، چاہے وہ انڈین ہو پاکستانی ہوں، اب ان کی کتابیں پڑھیں جا کے، جب تعریف فلسفہ پر آتے ہیں کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے اس کی تعریف میں علماء نے جو ہے وہ بڑا جنجالی بحث کی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ فلسفے کی تعریف کیا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے، اور فلسفہ کی تعریف کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. جواب اس کا انہی اصطلاحوں کے اندر ہے کہ آپ بالآخر فلسفے سے مراد کیا لے رہے ہیں. جب آپ یہ واضح کر لیں گے کہ آپ فلسفے سے کیا مراد لے رہے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن بھی واضح ہو جائے گی. یہ جو کتابیں لکھنے والے ہیں اور حیرت میں ہیں اور پڑھنے والے کو بھی حیرت میں ڈال رہے ہیں، وہ متوجہ نہیں ہے کہ فلسفہ کا لفظ جو ہے وہ کتنے مراحل طے کر کے آیا ہے، اور ہر مرحلے میں اس کی الگ ڈیفینیشن ہے. اگر انسان ان اصطلاحوں کو مد نظر رکھ کر اگر تعریف کی طرف جاتا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، انسان سرگرداں اور حیران اور پریشان نہیں رہتا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اس ایریے کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کلی طور پہ ذہن میں جائیں گے کہ فلسفہ ایک علم ہے، اب اس کی تعریف میں نے دیکھنی ہے، اب دیکھیں کانٹ نے کچھ اور تعریف کی ہوئی ہے، ڈیکارٹ نے کچھ اور تعریف کی ہوئی ہے، ارسطو نے کچھ اور تعریف کی ہوئی ہے، مثلا نٹشے جو ہے وہ کوئی اور تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یوں جا رہے ہیں، تو اب پریشان ہے کہ دیکھیں اب فلسفہ جو ہے وہ کس طریقے سے تعریفیں اس میں ہوتے ہیں. بھائی آپ پہلے مشخص ہو کہ وہ جو فلسفی تعریف کر رہا ہے فلسفے کی، وہ فلسفے کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اور یہاں بھی ہم نے اسی وجہ سے آیت اللہ مصباح حافظہ اللہ نے ایک بنیادی جو درس رکھا وہ کیا تھا؟ اصطلاحات کی وضاحت، تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اصل بحث ہماری کہاں چل رہی ہے. اور یہ کتاب جو فلسفے میں لکھی جا رہی ہے یہ کس فلسفی اصطلاح کے مطابق ہے. تو وہاں پر ہم نے نتیجہ یہ لیا تھا کہ ہم جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ فلسفہ اولیٰ کے بارے میں ہے. वो फलसफा कि जिसका मौजू मौजूद मुतलक है, इतलाक कैद है मौजूद की, यानी हम मौजूद को देखेंगे, उसके अहकाम बयान करेंगे, लेकिन ना कि हर किस्म के मौजूद के बारे में, बल्कि मौजूद मुतलक के बारे में, यानी मौजूद पर हमारी निगाह जो है उसके मौजूद होने के एतबार से होगी। क्योंकि ये मौजूद है, अब इसका मुझे हुक्म पता होना चाहिए। आप देखें वो हुक्म जो है वो सब पर लागू होते हैं। अगर आप कहते हैं कि एक मौजूद मौजूद बिमा हुआ मौजूद, मौजूद मुतलक, इसका एक हुक्म यह है कि ये या इल्लत होता है या मालूल होता है। आप देखें इस हुक्म से कोई भी मौजूद खाली नहीं है, या इल्लत होगा या मालूल, इससे बाहर नहीं है। आप कोई ऐसा मौजूद निकाल कर नहीं ला सकते कि जो मौजूद तो हो लेकिन ना इल्लत हो ना मालूल। ये वाले जो अहकाम जो इतने कुल्ली हों कि जो तमाम हस्ती को शामिल हो जाएं, वो किस किस वजह से हैं? क्योंकि ये अहकाम है मौजूद मुतलक है। क्योंकि मौजूद मुतलक में हमारी निगाह मौजूद होने पर है, ना कि मौजूद के जो अदद है, मौजूद के जो जिस्म है, मौजूद के जो बदन है, मौजूद के जो लकड़ी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है फलसफे उला के अंदर। बल्कि हमारी निगाह होती है मौजूद इस एतबार से कि मौजूद है। मतलब इस किताब के बारे में भी हम अगर बहस करेंगे फलसफा उला में, तो हम इस एतबार से नहीं बहस करेंगे चूंकि ये किताब है, अब मुझे इसके हुक्म बयान करने हैं कि इस किताब के क्या हुक्म है। ये मौजू फलसफा नहीं है। फलसफा कहेगा कि ये चूंकि मौजूद है, मैं आपको बताता हूं कि इसके मौजूद होने के एतबार से क्या हुक्म बनता है। मैं बताऊंगा कि ये मालूल है, मैं बताऊंगा कि ये वाहिद है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि ये बिलफेल है, मैं बताऊंगा आपको कि ये वजूद खारजी है, ये इस तरह के अहकाम जो है वो बयान करेगा इसी मसलन एक मौजूद के हवाले से। अब मेरे मेरे मद्देनजर यही मौजूदात हैं, लेकिन उनके मौजूद होने की हैसियत मद्देनजर है फलसफे में, फलसफे उला के अंदर।
और ये जो बाज़ अहकाम के मिसाल इल्लत का होना, ये इलाहियात से मुख्तस नहीं हो जाएंगे?
ना इलाहियात से क्या मुराद ले रहे हैं आप? चूंकि इलाहियात के बारे में हमने बात की थी, अगर इलाहियात से मुराद खुदा शनासी है तो मुख्तस नहीं है। अगर इलाहियात से मुराद उमूर आमा है तो फिर ये तो जाहिर बात है, जब उसका मौजू मौजूद मुतलक है तो इल्लियत इसी के साथ मरबूत होगी, इसी इलाहियात में बहस होगी। इलाहियात से हट के तो बहस नहीं होगी उसमें आकर।
जैसे अरब इस्वा ने खारिज किया था इलाहियात को,
इलाहियात बिलमान अलखस को खारिज किया था, यानी खुदाशनासी की बहस को। पिछले किसी दर्स में जो वो इशारा हुआ है इस बात के ऊपर कि चूंकि खुदाशनासी की बहस पाई जाती है फलसफे उला के अंदर, इस पूरे फलसफे को क्या नाम दिया गया? इलाहियात का। पूरे फलसफे को, चाहे वो उमूर आमा उसमें पाए जाते हों, चाहे उसमें खुदाशनासी की बहस पाई जाती हो, उसको इलाहियात का नाम दिया गया। लेकिन फिर तकसीम किया गया कि जो जहां पर उमूर आमा की बहस हो रही है, यानी ऐसे अहकाम के जो पूरी हस्ती को शामिल हैं, उनको उमूर आमा कहते हैं, उनको इलाहियात बिलमान अल आम कहा गया, यानी इलाहियात के जो आम माना में है, और खुदाशनासी की बहस को इलाहियात बिलमानल अखस कहा गया, यानी खास माने के अंदर इलाहियात के जो खुदा को शामिल है। तो इस एतबार से वहां पर बहस की थी हमने। हो, फलसफे का मौजू हो गया मौजूदे मुतलक, और आज फिर मुख्तसर सी वजाहत दे दी, चूंकि जरूरी है एक फलसफी दर्स पढ़ने वाले तालिबे इल्म के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि इसकी तरफ तवज्जो नहीं रहती, तो फलसफा पढ़ भी लेते हैं तो पता नहीं होता कि मौजूद बिमा हुआ मौजूद या मौजूद मुतलक से क्या मुराद है, उसमें परेशान रहते हैं। मेरा ख्याल में वाज़े हो गया है। जब आपने मौजू ये करार दिया फलसफ़ा उला का, तो फिर बाज़ नताएज जनाब आयतुल्ला मिसबाह ने मसाइल के एतबार से लिए। आयतुल्लाह मिसबाह फजुल्ला फरमाते हैं कि अगर हम फलसफ़े उला का मौजू मौजूद मुतलक करार देंगे तो फिर खुदाशनासी की बहस फलसफ़े उला का मसला नहीं होगा, माद की बहस फलसफ़े उला का मसला नहीं होगा। मुमकिन है कि और कि हम कहें कि ये फलसफी बहस है, लेकिन फलसफी बहस को हम फलसफा उला के माना में नहीं ले रहे होंगे। फिर क्या है इस्तिलाह कदीम के अंदर हम मिसाल के तौर पे चले जाएंगे, या हम मौजू कुछ और रख देंगे उसका के तफसील से इसके ऊपर बात हुई है। मैं फकत खुलासा बयान करना चाह रहा हूं ताकि वो जो इतनी तफसील से बात हुई है उसको खुलासे की सूरत में अगर सुनेंगे तो मतलब मुनज्जम हो जाएगा जहन में। तो आयतुल्लाह मिसबाह हफ़िज़हुल्लाह ने फरमाया कि अगर हम फलसफे उला का मौजू मौजूद मुतलक करार देते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल, बल्कि बहुत सारे बाज़ मसाइल कि खुदाशनासी की बहस है, नबुव्वत की बहस है, माद की बहस है, ये बहसें जो हैं फिर क्या हो जाएंगी, ये मसले के उन्वान से पेश नहीं होंगे इसके अंदर, दुरुस्त है। लेकिन बयान किया था आपकी खिदमत में कि ये एक आगा मिसबा की राय है। बाज जो दूसरे फलासफर हैं वो दिफा करते हैं इस नजर का कि क्यों खुदाशनासी को फलसफा उला में दाखिल किया गया, क्यों नबुव्वत और माद की बहस को और नफ्स की बहस को फलसफा उला में शामिल किया गया, वो बेउनवान मसला इनको जो है वो दाखिल कर रहे होते हैं कि फलसफा उला के बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से एक मसाला जो है वो खुदाशनासी है, एक मसाला जो है माद है, एक मसाला जो है वो नफ्स है। लेकिन मुकाबले में ये राय मौजूद है, ये कहते हैं कि अगर हम मौजूद मुतलक करार दे दें मौजू को तो फिर ये बेउनवान मसला नहीं होगा। क्यों? इस वजह से कि खुदा भी मौजूद खास है, नबुव्वत और माद भी जो हैं वो खास मौजूद हैं, नफ्स भी जो है वो मौजूद खास है। तो जब मौजूद खास है तो हमारा तो फलसफे उला में बहस किसके साथ है? मौजूद मुतलक के साथ। तो लिहाजा मसाइल फलसफा मौजू के साथ साजगार होते हैं। अगर आप खुदाशनासी को मसाले के उनवान से रख रहे हैं इसके अंदर तो इसकी साजगारी होनी चाहिए मौजूद मुतलक के साथ। और हम देख रहे हैं कि जो खुदाशनासी के मसाइल हैं उसका मौजू मौजूद खास है जो कि वाजिबुल वजूद है, दुरुस्त है। तो इस बात को कह के आगे बढ़ गए थे और कहा था कि मेरे नजदीक जो उमूर आमा की बहस है वो तो फलसफा उला है, बाकी जो अबहास इसके अंदर बयान की जाती हैं वो मसाइल फलसफा उला नहीं हैं, बल्कि हम यूं कहेंगे कि मुख्तलिफ उलूम फलसफे के ज़िमन में डाल दिए गए हैं। खुदाशनासी एक अलग इल्म है, इल्म नफ्स जो है वो अलग इल्म है, नबुव्वत और माद एक अलग इल्म है। बाज मुनासबतों की वजह से इन मसलों को फलसफे उला के अंदर दाखिल कर दिया गया। वो क्या है? रविश तअक्कुली होना। हम खुदा के बारे में बहस कर रहे होते हैं अकली रविश को मद्देनजर रखते हुए, हम इल्म नफ्स से बहस कर रहे होते हैं अकली रविश को मद्देनजर रखते हुए, हम जो है नबुव्वत माद के बारे में बहस कर रहे होते हैं अकली रविश की को मद्देनजर रखते हुए। चूंकि ये मुनासबत पाई जाती है इन मसाइल की फलसफा उला के साथ, चूंकि फलसफा उला की अपनी रविश क्या है, तअक्कुली है कि अभी हम पढ़ेंगे, तो इस मुनासबत से इन मसाइल को इन उलूम को फलसफा उला में दाखिल कर दिया गया। आयतुल्लाह मिसबाह हफ़िज़हुल्लाह की यह नजर है। खूब, जब हमारे लिए फलसफा उला का मौजू वाज़े हो गया तो अब तारीफ करते हैं। फरमाते हैं कि फलसफा उला ऐसा इल्म है कि जो मौजूद मुतलक के अहवाल के बारे में बहस करता है, ऐसा इल्म है जो वजूद के कुल्ली अहकाम के बारे में बहस करता है। या ऐसा इल्म है फलसफा उला उन मसाइल और कजाया का मजमूआ है कि जो मौजूद बिमा हुआ मौजूद से मरबूत हैं, कजाया और मसाइल, और मौजूद बिमा मौजूद से मुराद वही मौजूद मुतलक है कि जिसकी वजाहत बयान कर दी है। तो ये तारीफ जो है वो वाज़ह है। अब ये तीन तारीफें नहीं है बल्कि तीन ताबीरें हैं। आप किसी एक भी ताबीर को अगर इंतखाब कर लेंगे तो काफ़ी है, और फलसफा उला की तारीफ ये पाई जाती है। बात वाज़ह बस। अब चूंकि इस्तिलाहें मुख्तलिफ हैं, तारीफ भी मुख्तलिफ हैं, अब कोई बंदा आके ये ना कि मतलब फलाने ने तो फलसफे की तारीफ ये की थी, तो आपस में जो है ये फ़र्क करते हैं ना, फ़र्क नहीं है, इस्तिलाह फ़र्क करती है। जब ये हमारे लिए मौजू फलसफा भी वाज हो गया, तारीफ फलसफा भी वाज हो गई, तो अब कहते हैं कि हम फलसफे की बाज़ अहम खसूसियात आपको बयान करते हैं। पहली जो खसूसियत यहां पर बयान करते हैं वो है कि फलसफे में जब मसाइल को इस बात किया जाता है तो रविश वहां पर तअक्कुली होती है, अकली होती है, इसके अलावा किसी रविश का सहारा नहीं लिया जाता, फकत अकल से इस्तेफादा किया जाता है, रविश अकली के जरिए मसाइल को साबित किया जाता है फलसफे के अंदर। लेकिन अगर आप दूसरे उलूम में चले जाएं उनकी रविशें अलग हैं, मसलन तजुर्बी उलूम में चले जाएं तो वहां पर रविश जो है वो तजुर्बी है। अगर आप तारीखी उलूम में चले जाएं, रिवाई उलूम में चले जाएं, फिकही उलूम में चले जाएं, तो वहां पर रविश जो है वो कौन सी है, नकली है, कि नकल पर इक्तफा किया जाता है। तो बस फलसफे की जो एक अहम तरीन खसूसियत है वो ये है कि फलसफा रविश अकली के साथ अपने मसाइल को इस बात करता है, और बाकी उलूम में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। ये एक मतलब। जनाब आयतुल्लाह मिसबाह हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगर हम थोड़ा सा दकीक होकर सोचें तो ये फलसफे की खसूसियत तो है लेकिन इन्हिसारी खसूसियत नहीं है। एक मरतबा होता है ना कि इन्हिसारी है, फकत इसी में और किसी में नहीं है, इसको कहते हैं इन्हिसारी खसूसियत। लेकिन एक मरतबा खसूसियत होती है लेकिन वो दूसरे उलूम में भी पाई जाती है। तो फरमाते हैं कि रविश अकली के जरिए मसाइल का इस बात करना ये फलसफा उला की खसूसियत इन्हिसारी नहीं है, बल्कि बाकी उलूम बाज ऐसे उलूम हैं कि जिसमें इन्हीं इसी रविश से इस्तेफादा किया जाता है। जैसा कि खुदाशनासी में अभी बयान कर रहा था कि खुदाशनासी के अंदर जब आप वजूद खुदा का इस बात कर रहे होते हैं तो वहां पर आप क्या है? रविश अकली से इस्तेफादा कर रहे होते हैं। या मसलन इल्मुन्नफ्स फलसफी, इल्मुन्नफ्स कि जिसमें फलसफी निगाह होती है उसको कहते हैं इल्मुन्नफ्स फलसफी, फिलासफी ऑफ साइकोलॉजी मसलन आप कह लें इसको। दुरुस्त है, इसमें भी क्या है रविश तअक्कुली जो है वो मद्देनजर होती है, और फलसफा अखलाक के अंदर भी, हत्ता रियाजियात, रियाजियात के अंदर भी, रियाजियात के मसाइल को जो इस बात किया जाता है अकल के जरिए किया जाता है, रविश अकली का सहारा लिया जाता है। तो फरमाते हैं बस हम इसको खसूसियत इन्हिसारी तो नहीं कहते फलसफा उला के लिए, हाँ खसूसियत जरूर है दूसरे उलूम के मुकाबले में, उलूम नकली के मुकाबले में, उलूम तजुर्बी के मुकाबले में। ये एक मतलब जो इन्होंने यहां पर बयान किया। दूसरी जो खसूसियत बयान की जाती है फलसफा उला के लिए वो ये है कि फलसफा तमाम उलूम के मबादी तस्दीकिया का इस बात इसके जिम्मे है। और यहां पर मबादी तस्दीकिया से क्या मुराद है हमारी, पीछे वजाहत की है आपको, यानी वो मसाइल के जो क्या करते हैं, उस इल्म के मसाइल के इस बात में दखालत रखते हैं, यानी इनका इस बात करना जरूरी है ताकि हम उस इल्म के अपने जो मसाइल हैं उसको जब साबित करेंगे तो उसके लिए ये करामत साबित होते हैं। दुरुस्त है? तो कहते हैं मबादी तस्दीकी फलसफे की जिम्मेदारी है कि वो उलूम को दे, लेकिन यह मबादी तस्दीकी कौन से मुराद हैं? कुल्ली, ना कि हर मबदाए तस्दीकी, हर मबदा तस्दीकी नहीं बल्कि खुली मबादी। कैसे? मसलन जैसे पहले भी इसकी मिसालें आई हैं बल्कि इसी दर्स के अंदर आई हैं कि मसलन आप अगर तजर्बी उलूम के अंदर जाकर मसाइल का इस्बात करना चाहते हैं, आप मादे की बाज़ मसाइल को बयान करना चाहते हैं, तो आप मादे के मसाइल को आप उस वक्त इस्बात कर सकते हैं कि जब आपके लिए कानून इल्लियत जो है वो साबित हो। बस कानून इल्लियत क्या हो रहा है? वासिता बन रहा है ताकि तजर्बी उलूम के अंदर मसाइल को इस बात किया जा सके कि जो तजर्बे से जो मादे के साथ मरबूत हैं, तजर्बी उलूम के मौजू के साथ मरबूत मसाइल हैं उनको साबित कर सकें। तो आप ये असल इल्लियत व कानून इल्लियत ये मबादी तस्दीकी कुल्ली है, यानी ऐसा मबदा तस्दीकी है कि जो कुल्ली है, यानी किसी एक इल्म के साथ मरबूत नहीं है बल्कि तमाम उलूम इसके मोहताज हैं, चाहे वो तजर्बी उलूम हो चाहे वो कोई और इल्म हो। आप अगर उस इल्म में नतीजा लेना चाहते हैं तो आपको कानून इल्लियत मानना पड़ेगा, और कानून इल्लियत साबित कौन करता है? इसका वजीफा किसका वजीफा है? फलसफा उला का। फलसफा उला इल्लियत का इस्बात करता है, साबित करता है दलील अकली के साथ, रविश अकली के साथ कि इल्लियत है और इल्लियत के क्या मसाइल हैं उसको बयान करता है, और बाकी उलूम फिर फलसफे से ले लेते हैं और फिर उसके सहारे पर अपने नताइज जो हैं वो बयान करते हैं और अपने मसाइल को इस्बात करते हैं। बस फलसफा जिन उलूम जिन मबादी तस्दीकिया को इस बात करने की जिम्मेदारी रखता है वो मबादी तस्दीकिया कुल्ली हैं। या मसलन अगर आप देखें उलूम तजर्बी जो हैं इनका मौजू क्या है? जिस्म। दुरुस्त है? जिस्म मद्देनजर होता है इनके। अब जिस्म मुख्तलिफ नौइयत के हैं, उनसे भी सरोकार नहीं है। जिस्म जो है वो हतमन जरूरी है किसके अंदर? तजर्बी उलूम के अंदर। तो अब जिस्म जब आप उसके मसाइल बयान करना चाह रहे हैं तो अब जिस्म का इस बात कौन कर रहा है? फलसफा। तो यहां पर हमने कहा था कि मौजू के इस बात में भी फलसफे के मोहताज हैं उलूम, और मबादी तस्दीकिया के इस बात में भी फलसफे के क्या हैं? मोहताज हैं उलूम। क्या आपकी खिदमत में बयान किया था। फरमाते हैं कि इसी वजह से कि उलूम अपने मबादी तस्दीकिया के इस बात में फलसफे के मोहताज हैं, इसी वजह से फलसफे को उम्मुल उलूम कहा जाता है, यानी तमाम उलूम की मां। और उम से मुराद यहां पर और मां जो कहा जाता है मर्जे के माना में है, यानी तमाम उलूम का मर्जे क्या है? फलसफा है। कि अगर पहले भी बयान किया था कि अगर फलसफे का इनकार कर दें तो आप अपने इल्म के मसाइल को ही इस बात नहीं कर पाएंगे, वो मतलब यहां पर है कि बाद में ऐसा ऐसा तफसील आएगी। दो खसूसियतें हो गई। तीसरी खसूसियत फरमाते हैं कि फलसफा अगर इंसान पढ़ लेता है तो उसको मेयार मिल जाता है कि जिसके तवस्सुत से इंसान हकीकी उमूर को वहमी और एतबारी उमूर से जुदा कर सकता है। मसलन अगर आप बिदायतुल हिकमा जो अल्लामा तबातबाई की किताब है, और इसी तरीके से निहायतुल हिकमा है, उसके इब्तदाई सफहात के ऊपर ही आप जब जाकर मुताला करेंगे तो वहां पर फायदाए फलसफा के नाम से जो एक फायदा जिक्र किया है वो क्या है कि फलसफा पढ़ के इंसान में ये कुदरत आ जाती है कि इंसान हकीकी जो उमूर हैं उनको वहमी और एतबारी उमूर से जुदा कर देता है, मेयार और मेलाक उसके हाथ में आ जाता है। उन मेयार और मेलाक के मुताबिक वो ये कह सकता है, तशखीस दे सकता है कि ये जो मौजूद है ये हकीकी है और फलाने फलाने मौजूदात जो हैं वो एतबारी हैं या वहमी हैं। अब एतबारी वहमी और ये क्या है, इंशाल्लाह जब हमारी एपिस्टेमोलॉजी और मार्फ़त-शनासी की बहस आएगी वहां पर खोलेंगे, अभी यहां खोलने की जरूरत नहीं है। बस ये तीसरी खसूसियत है जनाब आयतुल्ला मिसबा। यहां पर एक फिर दोबारा एक मुख्तसर सा नकद करते हैं, फरमाते हैं कि अगर आप इसको इन्हिसारी खसूसियत के माना में ले रहे हैं तो ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, अगर देखा जाए हकीकत में ये खसूसियत मारिफत शनासी की है ना कि फलसफा की। यानी वहमियात और एतबारियात से मौजूद हकीकी को जुदा करना किस मेयार के तहत है, वो मेयार मारिफत शनासी देता है ना कि फलसफा। लेकिन बाज असातीर फरमाते हैं कि इसको हम फलसफे का खसूसियत बना सकते हैं, और मुख्तसर सा फर्क है इनके दरमियान कि इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे तो मतलब शायद वाज़े हो जाए। बस आयतुल्लाह मिसबाह हफ़ज़हुल्लाह ये जो तीसरी खसूसियत है इसको फलसफे की खसूसियत नहीं मानते, कि जो बिदाया और निहाया के अंदर भी जिक्र हुई है फलसफे की खसूसियत के उनवान से, ये फरमाते हैं कि नहीं, ये मारिफत शनासी की खसूसियत है और हदफ है लेकिन फलसफे का नहीं है। चौथी और आखिरी खसूसियत जो किताब ने बयान की है वो ये है, फलसफी मफाहीम हिस और तजुर्बे से हासिल नहीं होते। मसलन इल्लत मालूल वाजिब मुमकिन माती मुजर्रद, ये जो मफाहीम हैं ये अगर हिस और तजुर्बा ना भी हो तब भी इंसान इन तक पहुंच जाता है। हिस और तजुर्बा होना जरूरी नहीं है इनके लिए कि इसकी बहस जो है वो तफसील से हम मार्फत शनासी में पढ़ेंगे कि वहां पर हम मफाहिम को तकसीम करेंगे तीन हिस्सों में। मफाहिम जो बाज़ जो हैं वो माकूलात उला होते हैं, बाज़ माकूलात सानिया होते हैं, और सानिया फिर मंतकी और फलसफी में तकसीम होते हैं, और फिर इनकी खसूसियात पढ़ेंगे जाकर, तो वहां ये मतलब वाज़े और रोशन हो जाएगा कि क्यों मफाहिम फलसफी हिस व तजर्बे से हासिल नहीं होते। तो लिहाजा चौथी जो खसूसियत है फलसफे की वो ये है कि मफाहिम फलसफी जो हैं वो हिस और तजर्बे से हासिल नहीं होते। तो फरमाते हैं कि अगर आपको ये चौथी खसूसियत समझ में आ गई जो कि मार्फत शनासी में तफसील से बात आएगी, तो आपको फिर ये मतलब भी समझ में आ जाएगा कि फलसफे में फकत और फकत अकली रविश क्यों मद्देनजर होती है। और फिर आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि आप तजर्बी उलूम को और तजर्बी कवानीन को अगर उमूमियत भी दे दें तब भी फलसफी कवानीन हाथ में नहीं आएंगे। यानी चूंकि एक नजरिया मौजूद है, पहले इशारा भी हुआ था उसकी तरफ, बाजों ने जो जो फलसफे का इनकार कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमें फलसफे की जरूरत नहीं है। क्यों? इस वजह से कि हम ये जो तजर्बी उलूम के कवानीन हैं इन्हीं को उमूमियत जब दे देंगे तो एक फलसफा वजूद में आ जाएगा। दुरुस्त है? तो आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं जब ये चौथी खसूसियत आपके लिए वाज हो जाएगी तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आप तजर्बी उलूम के कवानीन को उमूमियत देने के जरिए फलसफी कवानीन तक नहीं पहुंच सकते। फलसफी कवानीन इनकी उमूमियत से हासिल नहीं होते, बल्कि वो एक अलग मालूमात और इदराकात हैं कि जो इंसान को हासिल करने होते हैं और इंसान को हासिल होते हैं। बस ये फलसफा उला की चार खसूसियात थी कि इनमें से पहली खसूसियत को कहा कि ये इन्हिसारी नहीं है, और तीसरी खसूसियत को कहा कि ये फलसफे की खसूसियत नहीं है, बाकी दो को मुकम्मल तौर पे फलसफे की खसूसियत माना है और इन्हिसारी खसूसियत माना है इसको। हमारा जो है वो सातवां छठा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसके बाद सातवां जो है वो दर्स जो है वो शुरू होता है, कि ये भी मुकदमाती बहसों के अंदर है, कि इंशाल्लाह इसको फिर बाद में देखते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।